नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज अपने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे, साथ ही व्यापार, पर्यावरण अनुकूल विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु संरक्षण के प्रयास और आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। गोथेनबर्ग रवाना होने से पहले नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन स्वयं एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी को विदाई दी। नीदरलैंड्स की दो दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तथा व्यापार नेटवर्क पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर गहरी चिंता भी व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी नीदरलैंड्स यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ प्रसिद्ध अफ्सलाउटाइक बांध का भी दौरा किया। ये यात्रा गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत नीदरलैंड्स तकनीकी सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस परियोजना के तहत खंबात की खाड़ी पर 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाकर विशाल मीठे पानी का जलाशय तैयार किया जाएगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि एनआईडी जैसे संस्थान युवाओं को नवाचार और कौशल विकास के लिए सही मंच प्रदान करते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबित मांगे अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के दो पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। घटना में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ। जनगणना 2027 के लिए मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यवसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नैनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। ईरान ने घोषणा की है कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य उपकरणों से लदे शत्रु पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।